लर्नर, आज हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, ताकि जो प्रैक्टिकल लेसन के लिए, प्रैक्टिकल पोर्शन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. नॉट ओनली इन दिस केस, इन फ्यूचर भी आपको बहुत ही ज्यादा ये काम आएगा अगर आप इस आर्ट को या पेंटिंग सब्जेक्ट को लेके आगे बढ़ोगे. तो लर्नर, हम डिस्कस करते हैं. यू आर वेरी राइट, दिस द टॉपिक इज कंपोजिशन. तो लेट अस डिस्कस व्हाट इज कंपोजिशन. जैसे कि हम हर बहुत बार बात कर चुके हैं कि किस तरह से हम कंपोजिशन बनाएंगे, कैसे हम कंपोजिशन करेंगे, क्योंकि हमारा 70% मार्क्स है प्रैक्टिकल लेसन के लिए. एंड प्रैक्टिकल लेसन में दिस टॉपिक और दिस लेसन इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लेसन, जिसमें हर बार ही जब क्वेश्चंस आती है तो कंपोजिशन का एक क्वेश्चन हमेशा रहता है. 20 मार्क्स रहता है या 10 मार्क्स कभी हो सकता है, लेकिन आपको ये चीजें जानना और समझना बहुत जरूरी है कि किस तरह से कंपोजिशन हम बनाएंगे और व्हाट इज कंपोजिशन. कंपोजिशन है क्या, से कंपोजिशन बनाएंगे तो क्या क्या टाइप का कंपोजिशन हम बना सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में आपको अच्छा मार्क्स लाने के लिए. ये सारी चीजें बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत वैल्यू रखते हैं. तो आप जैसे कि जानते हैं कि कंपोजिशन की हम एक कोई भी सीन बना दिया है या कोई जहाँ पे बहुत सारी चीजें हमने कंपोज करके बना दिया है वही कंपोजिशन है. नो, यस इट इज राइट, बट नो, एज पर रूल या एज पर अगर अच्छा मार्क्स मिलना है तो ये ही राइट नहीं है. कंपोजिशन है क्या चीज, लेटेस्ट एनी कंपोजिशन इन एन एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग्स ऑफ द आर्टिस्ट इमर्जिंग आवर्स of the innermost layer of the heart. Such feelings are expressed through colors, lines, space, etc. They all are employed in such a manner that an expressive composition is created. In such composition, everything needs be in proper balance, rhythm and harmony. The composition becomes imbalanced if any of these essential elements is dropped. This necessitates harmonic communication, communion of all shapes. Composition, therefore, means the appropriate use of essential elements in the process of painting. So this is called composition. Now we will discuss the elements of the composition. What are the elements of the composition? First composition element is balance. Without balance, we cannot create any kind of composition or any kind of perfect drawing or illustration. So balance is very very necessary. Balance, without balance हम अगर कुछ भी drawing करें तो वो drawing complete नहीं हो सकता है, क्योंकि balance के बिना हमारी composition अधूरा रहेगा या हम complete नहीं कर पाएंगे. So balance is a very very important factor in composition. Second is rhythm. What is rhythm? रिदम इज, आप जैसे कि आप जानते हैं कि जब हम रिदम के बारे में हम बात करते हैं तो एक के साथ जो दूसरा जो हम ऑब्जेक्ट लगाए हैं या हमने ड्रॉ किया है उसमें एक रिदम होनी चाहिए. जैसे हमने अगर बहुत बड़ा ट्री लगा दिया और उसके बगल में एक छोटा सा वो एकदम से बहुत ही छोटा हट बना दिया और उसके बहुत पीछे एक एक प्लेग्राउंड बना दिया तो इसमें रिदम नहीं आ रहा है. रिदम मतलब, रिदम का मतलब होता है सुर या ताल. हर चीज का एक तालमेल होना बहुत जरूरी है. तो ये रिदम का मेंटेन करने के लिए हमें एक बहुत अच्छी तरह से समझना है कि हम क्या ऑब्जेक्ट डाल रहे हैं, एक के साथ दूसरे का जो कनेक्शन है और एक के साथ दूसरे का जो स्पेस स्पेसिंग है या कलर कम्बिनेशन की बात है, कलर की जहां तक बात है दोनों में जो कलर कंट्रास्ट हम देखेंगे उसमें एक रिदम होनी चाहिए, जो चीज हमारी आंखों को अच्छा लगता है, आराम में मिलता है। कोई ऑरेंज कलर का कुछ चीज बना देने के बाद और इसके बगल में फिर एकदम ब्लैक कलर का कुछ बना दिया तो वो बिल्कुल भी रिदमिक नहीं हुआ है। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है, कलर में भी होगा, शेप में भी होगा, साइज में भी होगा, प्लेसिंग में भी होगा एंड कंपोज करने का भी बात जब आएगी तब रिदम की बहुत जरूरत है। थर्ड एलिमेंट इज पर्सपेक्टिव। देन लेट अस डिस्कस व्हाट इज पर्सपेक्टिव। एक के साथ दूसरी का जो जो डिफरेंस होती है, डिस्टेंस होती है, वो हम पर्सपेक्टिव के तौर पर्सपेक्टिव कहते हैं। तो लेट अस डिस्कस पर्सपेक्टिव इज अ मीन्स बाय विच फॉर्म कैन बी पोजिशनड इन द इम्प्लाइड थ्री डायमेंशनल स्पेस ऑफ द पिक्चर। Knowledge of perspective and proportion is essential in any naturalistic drawing and painting. The object becomes smaller in size and hazy as it recedes from the foreground to background of the picture. The very good example is a lamp post. आप अगर कहीं एक lamp post से खड़े होके अगर आप बहुत दूर तक की लैम्प पोस्ट देखोगे तो आपको लगेगा कि जब बहुत दूर वाला जो लैम्प पोस्ट है वो बहुत छोटा हो गया है और जो सामने वाला है जिसके सामने आप खड़े हो वो सबसे बड़ा है। बट ऐसा नहीं है, अगर वो बहुत छोटा लैम्प पोस्ट के सामने अगर कोई बच्चा खड़ा होके देखेगा तो उसको भी सेम चीजें महसूस होगी। वो वहां से जब देखेंगे तो वो देखेंगे कि उसका लैम्प पोस्ट जो है सबसे बड़ा लैम्प पोस्ट, रोड साइड में जो लैम्प पोस्ट रहते हैं वो सबसे बड़ा है और जब वो जहाँ पे आप खड़े हो या आप दूसरा बच्चा खड़े हैं ऐसा लैम्प पोस्ट जो जब देखेगा तो वो सबसे छोटा है। दिस इज कॉल्ड पर्सपेक्टिव। हमारी नजर कहीं एक जगह पे जाके टिक जाती है, उसके दूर से हम नहीं देख सकते हैं। तो हमारी नजर का आपने लाइट का लाइट के बारे में पढ़ा है कि वो कोन शेप में जाके खड़े होते हैं, कोन शेप में आता है। क्यों? क्योंकि हमारा नजर बड़े से छोटे की तरफ एक केंद्र बिंदु में जाके मतलब एक पॉइंट में जाके टिकता है, पॉइंट में जाके रुक जाती है। तो दिस इज कॉल्ड पर्सपेक्टिव। जब हम एक चीज को हम समान चीज को हम देखेंगे एक जगह पे खड़े होके देखेंगे तो हम देखेंगे एक जो सबसे बड़ा एक सबसे बड़े से लेके धीरे 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 छोटा होता जा रहा है। दिस इज कॉल्ड पर्सपेक्टिव। तो आप जब कुछ भी चीजें ड्राइंग करोगे कंपोजिशन में, स्पेशली कंपोजिशन में ये सारी चीजें बहुत मायने रखती है, क्योंकि कंपोजिशन में जो चीज आप सामने बनाओगे जो आप एकदम फोरग्राउंड में है वो बड़ा साइज में होना चाहिए, जो बैकग्राउंड में है वो छोटा छोटा साइज में होना चाहिए। वहां पे अगर कोई बड़ा सा ट्री बना देंगे तो वो गलत है। तो पर्सपेक्टिव की बहुत ही ज्यादा इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर द कंपोजिशन। ये चीजें आपको ध्यान रखना है, फोरग्राउंड में सारी चीजें स्मॉल साइज होगा एंड सॉरी फोरग्राउंड में सारी चीजें लार्ज साइज में होगा एंड बैकग्राउंड में जो चीज है वो धीरे धीरे करके सबसे ज्यादा पीछे जो है वो सबसे छोटा बनाना पड़ेगा, आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। ये सारी चीजें बहुत ध्यान से बनाना पड़ेगा। अगर आपने कोई रेलवे लाइन का या रेलवे स्टेशन का कोई कंपोजिशन बनाए तो आपको ये चीजें बहुत ध्यान से देना चाहिए कि कोई ट्रेन अगर स्टेशन में खड़े हैं आप अगर दिखाना चाहते हो, इस तरह की कोई ड्रॉइंग करना चाहते हो तो पहले वाला जो जहाँ पे आप जिस कमरे में आप चढ़ना चाहते हो वहाँ पे आप खड़े हो, मानो कि आपके सामने में जो ट्रेन की वो जो पटरी पे ट्रेन जो खड़े हैं आपके सामने वाला जो पोर्शन है ट्रेन का वो बहुत बड़ा एंड लार्ज दिखेगा। अगर आप पीछे की तरफ जितना देखते जाओगे देखना ट्रेन धीरे 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 छोटा होता जा रहा है। आपकी आंखों की नजर से वैसा तो है नहीं रियलिटी में, लेकिन आपको ऐसी ही दिखाई देगा। तो आप जब ड्राइंग करोगे, आप इसी तरह से ही ट्रेन बनाओगे, तो इसी तरह से ही आपको समझना बहुत जरूरी है, ड्रॉ करना भी बहुत जरूरी है। और अगर कोई ट्रेन आपने नहीं दिखाना चाहते हो, सिर्फ लाइन दिखाना चाहते हो, पटरी दिखाना चाहते हो, तो आपके जो सामने वाला पोर्शन है वो सबसे ब्रॉड एंड प्रॉपर साइज में है, और जब आप लाइन में लाइन की जब पीछे बहुत लंबा खींच रहे हो, खींचोगे जब आप बहुत पीछे का तब इसको दिखाओगे, जो एंड पोर्शन है दिखेगा, मतलब एंड का पोर्शन है आपकी जो पेंटिंग का जो एंड पोर्शन होगा वो एक के साथ दूसरा मिक्स हो जाएगा। ये ऐसा ही होता है जब आप कोई लाइन में खड़े हो के आप लाइन की इसको देखोगे तो आप जहाँ पे खड़े हो वो प्रॉपर साइज में है, प्रॉपर पोर्शन में है। जब आप इसको बहुत पीछे की तरफ आप देखोगे तो आप देखना कि दोनों लाइन लगेगा आपको कि दोनों लाइन दोनों में जॉइंट कर लिया है, एक के साथ दूसरा मिल गया है। तो ये चीजें जो है ये तो हमारी आंखों के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी आंखें यहाँ पे जाके टिकता है। तो सेम चीजें ही आपको ड्रॉइंग करना पड़ेगा। कंपोजिशन की बात मैं बार बार इसलिए आपसे बात करती हूँ क्योंकि कंपोजिशन में नंबर बहुत अच्छा मिलता है एंड कंपोजिशन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिससे हम इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। अब आता है इसमें एक चीज है कि जैसे लाइक कंपोजिशन में हमने ये पक्षी का तो बात कर लिया है एंड हमने एक मतलब पर्सपेक्टिव की बात कर लिया है, पर्सपेक्टिव तो हमने दिखा दिया है, लेकिन आपको ये ध्यान होना बहुत जरूरी है। मैंने बहुत सारे ऐसी कॉपीज दिखाए आप लोगों को, जैसे फोरग्राउंड में जो आपने बनाए हैं वो बहुत छोटे छोटे बनाए हैं और बैकग्राउंड वाला जो है बड़ा सा पेड़ बना दिया, बड़ा सा हट बना दिया, बड़ा सा रिवर बना दिया, बड़ा सा मोर बना दिया, पहाड़ भी बड़ा सा बना दिया। तो आपको ये क्वेश्चन में हो सकता है कि हाँ पहाड़ तो बड़ा ही होता है, सन भी बहुत बड़ा होता है, लेकिन पर्सपेक्टिव का जहाँ तक बात है वो बहुत दूर का, आप जब सन को देखते हो अपने घर से कितना छोटा सा लगता है, तो वैसे ही आपको बनाना है, छोटा सा बनाना है। हाँ उसमें जो ऑरेंज कलर, अगर मॉर्निंग का सीन दिखा रहे हो तो ऑरेंज कलर का जो आप चारों तरफ बनाओगे वो थोड़ा सा फैला दो, बहुत पूरी स्काई मतलब पूरी नहीं उसकी जो राउंड करके पूरी जितना हो सकता है उसको फैला दो, उससे क्लियर होगा कि सन का रे जो है इस तरह से फैलता जाता है। ये सारी चीजें पर्सपेक्टिव का जहां तक बात है, बिल्कुल फोरग्राउंड में जब आप बनाओगे वो बड़ा साइज बनेगा, चाहे वो कुछ भी हो जाए, मतलब आपने रिवर बनाया तो रिवर का प्रॉपर साइज में होना चाहिए, मतलब प्रॉपर साइज में आई मीन प्रॉपर का मतलब ये नहीं कि जितना बड़ा रिवर है उतना बड़ा तो कागज तो नहीं होता है, लेकिन प्रॉपरली होना चाहिए। एंड उसमें डक भी बनाया तो डक भी प्रॉपर दिखाना चाहिए आपको, लेकिन जो पीछे अगर आप रिवर बनाओगे बैकग्राउंड पे बनाओगे तो डक भी बहुत छोटा दिखेगा, रिवर का भी बहुत ही छोटा सा हल्का सा दिखेगा, कलर भी उसमें धीरे धीरे फेड होता जाएगा, ऐसा दिखाना पड़ेगा आपको। और जो हट भी अगर फोरग्राउंड बनाओगे हट का साइज बड़ा होगा एज कम्पेयर टू बैकग्राउंड हट, अगर बैकग्राउंड में कोई भी कुछ चीजें कुछ बनाओगे तो वो साइज छोटा होना चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड पर्सपेक्टिव, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द कंपोजिशन। नाउ वी विल टॉक अबाउट द लाइन, व्हाट इज लाइन बेसिकली, इट्स वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर द कंपोजिशन। बिसाइड द वेरिड काउंटर्स एंड क्रॉस काउंटर लाइन्स, मेनी अदर लाइन्स एंड लाइन पैटर्न्स हैव बीन डेवलप्ड टू क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोजिशन। ऑलवेज बिगिन विद अ सॉफ्ट लाइन विद लाइट प्रेशर ऑफ द फिंगर्स विच मेक इट इजी टू इरेज, शेडिंग ग्लिट स्टोन, बिकॉज शेडिंग इज वेरी मतलब वन ऑफ द एसेंशियल पार्ट ऑफ द कंपोजिशन। स्टोन दैट मीन्स टू एन एरिया ऑफ कलर अ वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर लाइटनेस एंड डार्कनेस, स्टोन ऑल्सो हेल्प टू डिफाइन द पर्सपेक्टिव। ट्राई टू गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ स्टोन विद पेंसिल ऑन अ पेपर, यूज योर पेंसिल लाइक 2B या 4B इस तरह से, मतलब 2B पेंसिल विद वेरी लाइट प्रेशर ऑन द पेपर टू गेट सॉफ्ट टोन, टू डार्कर टोन यूज 4B10 पे. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. वी हैव टू यूज फर्स्ट सॉफ्ट पेंसिल देन डार्क पेंसिल एंड पुट मोर प्रेशर एंड यू गेट डार्कर टोन. यू कैन यूज 6B और 9B पेंसिल टू गेट वेरी डार्क टोन. So while we are develop the shading, light and shading, when we are going to develop the shading in our composition, so you have to use 2B pencil, that is a very soft tone, then 4B pencil, and if you need many, if you need very darker tone, you can use 6B or 9B pencil. Now, what else is there? That is the color. Color is one of the important factors for the for the composition. Color may well be the most subject element of all. All vegetation is green, but you will use different hues of green for the maximum effect. Yes. Maximum effect. There are many kinds of watercolor techniques, but most common among these are opaque, that is post-color, and transparent use of watercolor. Opaque technique is easier to handle because you can apply many coats of color on it and rectify your mistakes. On the other hand, in transparent technique, you can use only one layer of color. Moreover, you cannot use white color. You have to pre-plan the white area and use the white of the paper to be left unstained. So, learner, हम आपको ये बता दें, अगर जहां पे व्हाइट की जरूरत है वहां पे व्हाइट कलर डालने की जरूरत नहीं है. क्या है वहां पे, क्योंकि व्हाइट कलर आप डालोगे तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा. हाँ, बाद में डाल सकते हो जब कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आपको क्या करना है, वो स्पेस को आप बिल्कुल छोड़ दो, कोई कलर उसमें यूज ना करो. यूज अगर करोगे तो आपका वो चीजें वो कलर दूसरी कलर के साथ मिक्स होके फिर वहां पे एक क्या बताऊं मैं आपको, मतलब कलर मिक्सिंग हो जाएगा तो आपको वो जगह व्हाइट नहीं दिखेगा. या आप कुछ भी चीजें ऐसे जैसे व्हाइट कलर का कोई एकदम प्योर व्हाइट कलर का छोटा सा टुकड़ा लेके वहां पे आप पेस्ट कर सकते हो तो उससे व्हाइट कलर व्हाइट दिखेगा. तो कोशिश ये रखना जहां पे आपको व्हाइट कलर की डालना है कंपोजिशन में, स्पेशली नॉट ओनली कंपोजिशन, इन एवरी स्पेस, एवरी ड्राइंग और इलस्ट्रेशन, जहां पे आपको व्हाइट कलर लगानी है तो वहां पे कोई भी कलर ना डालो. कोशिश करो कि व्हाइट कलर भी ना डाले. नाउ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एलिमेंट इज हार्मोनी. तो व्हाट इज हार्मोनी, डू यू नो व्हाट इज हार्मोनी? रेफर टू वेज सिमिलैरिटीज इन अ वर्क आर एक्शन टू क्रिएट एन uncomplicated uniform appearance. Harmony is achieved by repetition of characteristics that are the same or similar. Maybe कुछ भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है. अगर similar है तो it is okay. अगर थोड़ा सा बड़ा साइज भी होना चाहिए तो हम बड़ा साइज भी धीरे धीरे बड़ा भी कर सकते हैं. Harmony is a pleasing relationship between parts of an artwork. It is the quality of rhythmic composition in a picture. The opposite element is as important as the element in the front and the back. Both play useful roles when used properly. So, learner, harmony में हम जो चीज को दो बार तीन बार मतलब ज्यादा बार यूज करेंगे, सिमिलर चीज हो, सिमिलर पैटर्न हो, सिमिलर साइज हो, सिमिलर ब्लॉक हो, कुछ भी चीज है, जो चीज को हम दो तीन बार ज्यादा जगह पे यूज करेंगे, जैसे पेड़ हम बनाते हैं तो पेड़ की जो डालियां होती है, डाल जो ब्रांचेस होती है, उसको हम बहुत बार यूज कर सकते हैं। कई कई आपने देखना बड़ा बड़ा कोई कंपोजिशन में कोई पेड़ बनाते हैं, देयर इज नो पत्ता, मतलब कितना सुंदर ड्राइंग करते हैं, देयर इज नो लीव्स, देयर इज नो फ्लावर, ओनली ब्रांचेस। देखिए उन्होंने पेड़ बहुत ही अच्छी तरह से समझा सकते हैं। तो वहां पे जो ब्रांचेस वगैरह है उसमें एक रिदम होनी चाहिए, उसमें एक हारमोनी होनी चाहिए। कैसे हारमोनी है हमको ये समझना बहुत जरूरी है। एक के ऊपर ब्रांचेस, एक में दूसरा, तीसरा, चौथा, बहुत सारे ब्रांचेस ऐसे हम ट्री में देखते हैं। तो सेम चीज जब हम कॉपी पर ड्रॉ करेंगे, हम उसको ध्यान में रखेंगे, जो ये सारी हमने ये जो ब्रांचेस बनाते हैं पेड़ का, जो ऊपर का जो ब्रांचेस बनाते हैं या लीव्स भी बनाते हैं, सारी लीव्स को दिखे और एक हारमोनी मेंटेन हो एक के साथ दूसरा। हो सकता है कि एक के ऊपर दूसरा लीव भी आ जाता है, लेकिन वो उसमें ऐसी कलर से आपको या टेक्निक से, मतलब कलर से, या अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट में करना चाहते हो, पेंसिल शेडिंग से करना चाहते हो, तो शेडिंग में ऐसा करना चाहिए ताकि आपको पता चले कि दो लीव सद्यार, टू लीव सद्यार, लाइक एक एक के ऊपर एक है, ये दोनों साथ साथ में। ऐसा तो नहीं है कि एक के साथ दूसरा एकदम से लगा हुआ चिपका हुआ है, अगर हो तो आपको भी ये दिखाना है। ये दैट इज अप टू यू, आपका कितना प्रैक्टिस है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से आप पेड़ को या आपने हारमोनी को मेंटेन करते हो। नाउ वी विल कम टू द रिदम। रिदम के बारे में हमने आपको बता चुके हैं कि रिदम कैसा होना चाहिए, कैसे किस तरह से होना चाहिए। तो एक बार और एक बार बताते हैं, बिकॉज रिदम के बिना कोई भी कंपोजिशन कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो रिदम इज एन एलिमेंट यूज टू क्रिएट द इल्यूशन ऑफ मूवमेंट। दिस इफेक्ट इज मोस्टली अचीव्ड बाय रिपीटेशन ऑफ लाइन, शेड एंड कलर। दिस रिदम इज प्रेजेंट इन ऑल फॉर्म्स ऑफ आर्ट लाइक पोएट्री, डांस, म्यूजिक एक्सेट्रा। एन एग्जाम्पल कुड बी अ सीरीज ऑफ बर्ड और कैटल पेंटेड वन आफ्टर द अदर विद स्लाइट वेरिएशन इन शेप एंड साइजेस। दिस वुड ब्रिंग अबाउट अ फीलिंग ऑफ द बर्ड फ्लाइंग एंड द कैटल ऑन द मूव। जब आप कुछ भी बर्ड, सो मेनी बर्ड यू आर गोइंग टू बी, आई मीन गोइंग टू बी ड्रॉ, तो आपको ये देखना चाहिए कि रिदम में बर्ड जब आपसे देखते हो नीचे से, जब आप कुछ भी इस तरह की कोई पेंटिंग, आई मीन ओरिजिनली रियलिटी में देखते हो, आप एक चीज देखना कि बर्ड कितने दूर से जब स्काई में, आसमान से बर्ड उड़ के जाते हैं, तो वो देखना कि एक के बाद एक दूसरा, मतलब एक त्रिकोण आकार में हमें दिखाई देता है कि एक पहले एक 10-12 बर्ड्स एक साथ है, उसके पीछे एक एक कम करके है, मतलब एक त्रिकोण राइट एक ट्रायंगल शेप में हमें दिखाई देता है। क्यों कहते हैं उसको, इसका रिदम जब आप ड्रॉ करोगे कॉपी पे, ऐसा ही रिदम होना चाहिए। एक रिदम इसको कहते हैं, रिदम एक के साथ दूसरे का जो रिलेशन है, एक रिदमिक रिलेशन, मतलब एक के साथ दूसरा बहुत ही अच्छी तरह से इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो। कोई भी पंछी को बना दिया, कैटल को बना दिया, तो मैंने आप अगर ऐसा दिखा सकते हो कि सारे कोई काउ बॉय, कोई काउ, सारे अपना काउस को लेके घर जा रहे, लौटते हैं शाम को, घर लौटते हैं, तो वो जो काउस जो दिखाना है, तो एक के साथ दूसरा ओवरलैपिंग कर दोगे, उसमें भी एक रिदम होता है अगर उसको अच्छी तरह से कर सकती हो। तो एक ये कोशिश करना कि सारे जो काउस लेके जा रहे हैं उसमें बहुत ही एक रिदम मेंटेन करके, कितना अगर कम करना चाहते हो, कम ड्रॉ करना चाहते हो, कम करो, लेकिन एक रिदम का मेंटेन होना बहुत जरूरी है। मतलब वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर द कंपोजिशन इज टेक्सचर। तो लेट अस डिस्कस व्हाट इज टेक्सचर। टेक्सचर इज एलिमेंट ऑफ आर्ट दैट रेफर्स टू हाउ थिंग्स फील और लुक एज इफ दे माइट फील इट टच। इट रेफर्स टू सरफेस क्वालिटी, रफ और स्मूथ, दैट इज एब्सोल्युटली डिपेंड अपॉन यू। दिस कैरेक्टर कैन बी अटेन्ड बाय द क्वांटिटी ऑफ कलर यूज और ह्यू। इट इज अप्लाइड ऑन द पेंटिंग एरिया, ब्रश और पेंसिल स्ट्रोक कैन बी यूज टू ब्रिंग फोर्थ द फीलिंग ऑफ टेक्सचर। तो लर्नर आपने देखा होगा कोई पेंटिंग में हम जब टच करते हैं, कोई बड़े बड़े पेंटिंग जब आप देखते हो या आपने सामने से कोई स्कल्पचर देखा है, तो जब हम उसको टच करते हैं तो हमें एक फील होता है, हमें एक 3D इफेक्ट दिखता है। वो कैसे होता है? नहीं, स्कल्पचर का तो बनाते ही है, वो उस तरह से आगे करके बनाते हैं, उसके आसपास में अगर कुछ भी टेक्सचर उन्होंने बनाए हैं तो हम जब उसको टच करते हैं तो हमें फील होता है, हाथ में छुपता है, हमें ये नहीं कि एक स्मूथ में दिखाई देता है, ऐसा नहीं है। वो कैसे करता है? वो कलर से कर सकते हैं या ब्रश से। कलर को आप एक कहीं भी, आप अपने घर का कोई भी एक साइड को लेके भी आप उसमें टेक्सचर बनाना चाहते हो, यू कैन डू योर एज योर ओन। कैसे? आपने कलर ले लिया और कोई स्पॉन्ज में कलर नहीं, एक साइड का वॉल ले लिया, या आप पहले अपने कॉपी पे ही प्रैक्टिस करो, कागज पे प्रैक्टिस करो। कैसे करना है? एक छोटा सा स्पॉन्ज का टुकड़ा ले लो और उसको एकदम से मतलब ट्विस्ट करके पकड़ना होता है, और कलर का डब्बा सामने रखो और उसमें जस्ट डुबो के जस्ट दीवार पे, मतलब कागज पे, सॉरी नॉट दीवार पे, आप पहले कागज पे करोगे तो कागज पे उसको जस्ट लगाते जाओ, उसकी छाप लगाते जाओ, जैसे हम बोलते हैं ना छाप लगाना, उस तरह से आप उसको लगाते जाओ, रखते जाओ उसमें, लगाओ और देन अगेन कलर में लगाओ, फिर उसमें लगाओ। मतलब इसमें क्या होगा, कलर का वहां पे कुछ जगह पे वो जमा हो जाएगा, कुछ जगह पे जमा होगा, कुछ जगह पे ऐसी लगेगा। तो ये जो चीजें पोर्शन है, जब उस कागज को आप पूरा भर दोगे, डिफरेंट डिफरेंट कलर से भी आप कर सकते हो, डिफरेंट डिजाइन भी आप बना सकते हो, दैट इज एब्सोल्युटली डिपेंड अपॉन यू। आप ब्रश भी कर सकते हो, ब्रश को जस्ट कलर में डुबो के एक जगह पे जस्ट उसको ऐसे 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 थोप थोप के उसको जब आप लगाओगे तो वो टेक्सचर क्रिएट होती है, और वो टेक्सचर बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। आप फ्लावर बर्ड जब बनाओगे कोई भी कंपोजिशन में, जब आप गार्डन का सीन बनाना चाहते हो, उसमें फ्लावर दिखाना चाहते हो, तो फ्लावर हमेशा ऐसा होता है कि फ्लावर को हम दिखाना चाहते हैं, एक 3D इफेक्ट लुक देना चाहते हैं, तो इस तरह से आप ब्रश से उसमें पहले तो एक बार बैकग्राउंड कलर बना दो, पूरा एक पूरा ऑल ओवर उसमें कलर डाल दो, और फिर उसके ऊपर में थोड़ा सा कंट्रास्ट कलर लेके उसकी उसी का ही, मानो कि रेड कलर का कोई फ्लावर बनाओगे तो रेड कलर पहले तो हल्का टोन उसमें लगा दो, एक टोन, उसके बाद सीधा रेड कलर में उसमें पानी नहीं मिला के पोस्टर कलर लेके, और पोस्टर कलर लेके या आप वाटर कलर से भी आप कर सकते हो, सीधा ट्यूब से आपके आपने ब्रश में ले लिया कलर और वो सीधा उसके ऊपर थोप दो, वो पूरी जो आउटलाइन है पूरा भर दो, उसमें आउटलाइन से अंदर के पोर्शन पूरा, इनर पोर्शन पूरा भर दो, तो इससे आप खुद ही देखना कितना सुंदर इफेक्ट आती है, और दैट इज कॉल्ड अ टेक्सचर। टेक्सचर का एक ब्यूटीफुल चीज है कि हम उस चीज को बना के अपने घर पे भी वॉल पे भी बना लगा देंगे तो भी एक बहुत अच्छा लुक होती है। एक स्मूथ सर्फेस होती है, एक टेक्सचर, जैसे कि स्मूथ सर्फेस में हम जब कुछ भी चीजें बनाते हैं तो उसमें कलर की जरूरत ज्यादा होती है। अगर रफ सरफेस में हम कुछ भी चीजें बनाएंगे तो उसमें जब कलर अगर हम डाल देंगे, जब सिर्फ कलर कर देंगे और उसको ब्रशेस से ज्यादा उसमें मेहनत की जरूरत नहीं है ऑलरेडी, क्योंकि ऑलरेडी उसमें टेक्सचर बना हुआ है, और हमें क्रिएट करने के लिए हमें ज्यादा कलर लगा के ब्रश से भी कर सकते हैं, स्पॉन्ज से भी कर सकते, कोई कागज का टुकड़ा ले लो उसको स्विच करके कलर में जब डिप करके उसको वहां पे लगाते जाओ, दिस इज कॉल्ड द टेक्सचर। तो ये तो गई हमारी पेंटिंग कंपोजिशन का एलिमेंट। अब कंपोजिशन बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि कंपोजिशन बनाने के लिए आपको क्या क्या चीजें की जरूरत होगा। पहले तो मटेरियल की आपको बहुत जरूरत है, कौन सा मटेरियल आपको जरूरत है, पेन, पेंसिल, ये सारी चीजें, इरेजर भी साथ में रखना, ताकि इरेजर का कभी जरूरत है कोशिश करना कितना कम यूज हो सके, लेकिन साथ में रखना जरूरी है। और कंपोजिशन को जब हम बनाएंगे, कंपोजिशन हमने आपसे ऑलरेडी पहले भी बात कर चुके थे कितने टाइप का कंपोजिशन होते हैं, तो हम इस बार आपको बताएंगे कि कंपोजिशन का टाइप तो आपने मान लिया, समझ लिया कि ज्योमेट्रिकल शेप में भी कंपोजिशन होता है, कॉन्सेप्चुअल कंपोजिशन भी होती है, कंपोजिशन विद ऑब्जेक्ट भी होता है, कंपोजिशन विद नेचर के साथ भी होती है, तो डेकोरेटिव फॉर्म्स ऑफ कंपोजिशन होता है। अब मैं आपको बताती हूँ, कंपोजिशन बेस्ड ऑन नेचर भी होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कंपोजिशन ये सारी चीज को मिला के भी दैट इज योर ओन क्रिएशन होगा, अगर आप कोई अच्छा सा कंपोजिशन बनाओगे। आप कोशिश करना इस बार जब आप पोर्टफोलियो सबमिट करोगे, अपना आपका अपना कंपोजिशन होना चाहिए, और होता भी है, ये बात बहुत सही है, कंपोजिशन हमेशा अपना होना चाहिए, और ये सारी चीजें उसमें दिखनी चाहिए, ये सारे कंपोजिशन कॉन्सेप्ट उसमें दिखने चाहिए. दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड कंपोजिशन. कंपोजिशन बनाने के लिए आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि क्या क्या चीजें आपको लगानी है, कैसे ड्राइंग भी कैसे करना है, और कितना कितना कलर आपको इसमें यूज करनी है. और कलर नॉट ओनली कलर, आप मिक्सिंग कलर भी कर सकते हो. जैसे पोस्टर कलर साथ में रख दिया, वाटर कलर साथ में रख दिया, और अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, घर से अवेलेबल बहुत सारे कलर है, आपके हल्दी पाउडर होता है उसके साथ थोड़ा सा पानी मिला के आप इसमें कलर बना, मतलब हल्का का मिलाना, ज्यादा ना मत मिलाना, उसमें से भी आप कलर बना सकते हो. लोकली अवेलेबल कलर से ग्रीन पत्ते से वो जो बीट रूट से आप रेड कलर बना सकते हो. दैट इज अपॉन टोटली अपॉन अप टू यू कैसे आप कलर बनाओगे. और कलर बनाने के लिए आपको ये सोचना बहुत जरूरी है कि जब हम कोई भी कलर बना रहे या लगा रहे तो हमें ब्रशेस को हमेशा वॉश करके ही दूसरा कलर हम यूज करेंगे. एक कलर लगाने के बाद दूसरा कलर के बीच में जो आपको एक बार वॉश करना बहुत जरूरी होगा. और अभी आपके पास आता है ब्रशेस भी किस तरह से आप यूज करोगे, ये हमने पहले भी आपको बता चुके हैं. फिर भी हम बताते हैं कि ब्रशेस हमेशा यूज करने से पहले एक कपड़ा रखना चाहिए, उसको जब आप वॉश करोगे पानी से उसको फिर एक बार साफ कर लेना बहुत जरूरी है. तो साफ करने के बाद जब आप ब्रश को यूज करोगे तो उससे क्या होगा, जो कलर आप लगाना चाहते हो वो प्रॉपर होगा. तो बच्चे हमने आपको क्या क्या सिखाया, आज हमने आपसे बात किया है व्हाट इज कंपोजिशन, द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द कंपोजिशन क्या क्या है, दैट इज अ रिदम, बैलेंस, हार्मनी, पर्सपेक्टिव, लाइन एंड कलर एंड टेक्सचर. और इसके अलावा भी बहुत सारे, आजकल तो बहुत सारे एलिमेंट्स हो गया, लेकिन दीज आर द बेसिक एलिमेंट्स फॉर द टू क्रिएट कंपोजिशन. ये सारी चीजें हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है. एंड कंपोजिशन बनाने के लिए हमने कैसे बनाना चाहिए ये हमने पहले भी आपसे बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बताते हैं कि कंपोजिशन जब हम बनाएंगे तो हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ब्रशेस को हम अच्छी तरह से वॉश करके क्या क्या कैसे कैसे यूज करेंगे कलर, और क्या क्या मटेरियल हम इसको इसके साथ में हम लगा सकते हैं. और एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, जब आप कोई भी कंपोजिशन बनाओगे आपको फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. जैसे कि हमने आपसे बात भी कर चुके थे, पहले भी बताए थे कि हमेशा कोशिश करना फोरग्राउंड में जो चीज है वो बहुत ब्राइट कलर होना चाहिए और वो साइज भी थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए एज कम्पेयर टू बैकग्राउंड थिंग. बैकग्राउंड में जो होगा वो उससे एज कम्पेयर टू फोरग्राउंड थिंग उसमें थोड़ा स्मॉल होना चाहिए एंड कलर भी थोड़ा सा हल्का होना चाहिए. थैंक यू.